हबकुक अध्याय तीन। हबकुक अध्याय तीन एक भजन है। हबकुक अध्याय तीन पद एक। शिग्योनित की रीति पर हबकुक नबी की प्रार्थना। भजन संहिता अध्याय सात जो शिग्योनित की रीति पर एक समान है, जहां वो चिल्लाकर गाया गया था, इसलिए ये जोर से पढ़ा जाना चाहिए। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हबकुक की प्रार्थना है जो उसने चिल्लाकर विलाप करते हुए यरमिया की तरह कहा। हबकुक अध्याय तीन पद दो। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। प्रभु, जो तूने मुझसे कहा कि तू क्या करने जा रहा है, मैंने सुना और डर गया। तूने कहा तू बेबीलोन को कोड़े के समान करेगा ताकि अपने लोगों को पीसे, लेकिन परमेश्वर, इससे मैं डर गया। हबकुक अध्याय तीन पद दो में आगे लिखा है, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। पूरा कर शब्द का अर्थ है अपने कामों को जिंदा रख। हबकुक अध्याय तीन पद दो के अंत में लिखा है, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। मूल रूप से भविष्यद्वक्ता कहता है, परमेश्वर, मैं चिल्लाया और मैंने तुझे अपनी शिकायत दी कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तूने कहा कि कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन प्रभु, कार्य करते रहना। जो कुछ मैंने सुना इससे मैं डर गया, लेकिन तू कार्य करता रह। प्रभु, अपने कार्य जिंदा रख। इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। अब वो बताता है कि ये कैसा होगा। हबकुक अध्याय तीन पद तीन। ईश्वर तेमान से आया। तेमान एदोम में है। हबकुक अध्याय तीन पद तीन में आगे लिखा है, पवित्र ईश्वर पारान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी की महान व्याख्या करता है। वो दक्षिण पूर्व की ओर यरूशलेम के जैतून के पहाड़ पर आएगा। जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम की ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। यशया कहता है, यशया अध्याय 63 पद 1। ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? उसका भड़कीला पहरावा बिजली है, उसके प्रकाश से स्वर्ग भर जाता है। हबकुक अध्याय तीन पद तीन के अंत में लिखा है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है, ओ मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती। हबकुक अध्याय तीन पद चार। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी या उसके हाथ से विकिरण निकलती थी। क्या आपने बादलों के पीछे सूर्य से ऊपर की ओर निकलती किरणें देखी है? और यही बात इब्रानी में है, विकिरण निकल रही है, बिजली की चमक और उसके हाथ में से किरणें निकल रही है। हबकुक अध्याय तीन पद चार और पांच। और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था, उसके आगे आगे मरी फैलती गई। ये महाक्लेश उसके आने से पहले होगा, और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। वो खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए, सब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में महाप्रलय लाने वाले न्याय और बदलाव के बारे में लिखा हुआ है, जो मसीह के आने से पहले महाक्लेश काल में होगा। तब सब पहाड़ और द्वीप उसके सामने से भाग जाएंगे। समुद्र अपना स्थान बदल देगा। भयानक महाप्रलय से पृथ्वी के ऊपर बदलाव होंगे। ये सब प्रभु के आने से पहले और परमेश्वर के महान न्याय से पहले होगा। हबकुक अध्याय 3:7 से लेकर 12 तक। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिदान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वालों विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकला गया, तेरा दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों को चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। पुराना नियम में कोप शब्द प्रयोग किया गया है, जो नए नियम के महाक्लेश काल के रूप में है। हबकुक अध्याय 3:12। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। किसको नाश करेगा? कलीसिया, उसके बेटे बेटियां, उसके लोग? नहीं, ये परमेश्वर के लिए संगत नहीं है। महाक्लेश काल जाति जाति के विरुद्ध होगा, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध नहीं। हबकुक अध्याय 3:13। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हां, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। उसका कोप और क्रोध ज्योतियों पर, परंतु उसके लोगों के लिए उद्धार जो छुटकारा है। हबकुक अध्याय 3:13 से लेकर 16 तक। तूने दुष्ट के घर सिर को घायल करके उसे गले से नेव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की भर्ची से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए भावंडर के आंधी की नाई आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हां जल प्रलय से पार हो गया। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंट थर थराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा, जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कोप का महान दिन, जब वो अपने क्रोध से जातियों को नष्ट करेगा, जैसे हबकुक लिखता है। लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर के न्याय के फल स्वरूप पृथ्वी पर सूनापन छा जाएगा, भविष्यद्वक्ता घोषणा करता है, क्योंकि वो विश्वासी मनुष्य है। हबकुक अध्याय 3:17। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो। धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि महाक्लेश काल के समय में पूरी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ेगा। आप मुद्रास्फीति की बात करते हो, गेहूं का एक चौथाई तौल एक दिन की कमाई में बेचा जाएगा। आप जो अपना धन सोना और चांदी खरीदने में लगाते हो, बाइबल इसके विरुद्ध चेतावनी देती है। इसलिए यदि आपने सोना 8.50 डॉलर के हिसाब से खरीदा तो गलती की। याकूब कहता है, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्लाकर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। आप जान लो आप इसे खा नहीं सकते। यदि आप पूंजी लगाना चाहते हो और क्लेश काल में सबसे धनी होना चाहते हो, अपना धन गेहूं खरीदने में लगाएं और आप क्लेश काल में धनी मनुष्य बन जाएंगे, यदि आपकी यही इच्छा है। अच्छा होगा अपना भरोसा यीशु पर रखें और अपना धन स्वर्ग में जमा करें और क्लेश काल से बचे। लेकिन एक भयानक अकाल इस पृथ्वी पर होने वाला है। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि खेती का क्या होगा यदि अमेरिका और रूस के बीच नाभिकीय युद्ध हो जाए? स्ट्रोंटियम 90 यदि गिरे, वो सारी खेती को विशाला कर देगा, सारा खाना खाने लायक ना होगा युद्ध में, क्योंकि गाय का घास दाना खाने लायक ना होगा, पर खाएगी और इस तरह स्ट्रोनियम 90 ग्रहण करेगी। जो लोग महाज्वाला के केंद्र में आकर पिघल जाएंगे वे अच्छे रहेंगे उनसे जो बम से बच जाएंगे। वो बाद में मरने के लिए बचेंगे या मारा दिए जाएंगे किसी के द्वारा खाना छीनते हुए जो उन्होंने 50 फीट भूमि के नीचे रखा है ताकि विकिरण से बचाए। मैं आपको बताऊं आणविक युद्ध के बाद कितना भयानक दृश्य होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझ पर दया करे और एक बम सीधा सर पर आए यदि मनुष्य के सम्मुख ऐसा होना है। मैं आणविक आहुति के बाद जीने की मंशा नहीं समझता। मेरे लिए ये सही नहीं है यदि मनुष्यों को मरने के लिए जीना पड़े। मुझे बचे रहने की इच्छा नहीं, मैं काफी बूढ़ा हूं। भविष्यद्वक्ता इस प्रकोप के दिन के न्याय के बारे में कह रहा है, क्योंकि चाहे अंजीर का पेड़ फल ना दे, दाखलता में फल ना लगे, जैतून पर्वत पर जैतून पेड़ ना हो, खेतों में अनाज ना हो और पशुशाला में पशु ना हो, ये सब होते हुए भी, हबकुक अध्याय 3:18, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। आनंदित शब्द का अर्थ इब्रानी में खुशी से उछलना है, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी विश्व कप जीतने के बाद आनंदित हुए थे। क्या आपने उनको देखा है? क्या खुशी का आलम था, कैसे झूम रहे थे। हबकुक अध्याय 3:18 में आगे लिखा है, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रसन्न शब्द इब्रानी में गियल है, जिसका अर्थ है खुशी होकर, मनोवेग से प्रभावित होकर चारों ओर घूमना। मैं प्रभु में प्रसन्न होकर उछलूंगा, कूदूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। अकाल या अकेलापन में भी खुश होकर प्रसन्नता से उछलूंगा। यहां फिर कुछ गलत शिक्षाएं हैं कि हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आप हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो, लेकिन हर बात के लिए उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। इसमें काफी भेद है। मैं बहुत बार हालात पर रोता हूं, पर प्रभु में प्रसन्न हूं। ये केवल सही दृष्टि रखने से है और प्रभु पर अपनी आंखें लगाए रखने से और उसकी अनंत योजना और कार्यक्रमों को जानने से प्रसन्न रहता हूं। जब मैं संसार को देखता हूं मैं रोता हूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर की अनंत योजना को समझता हूं मैं प्रसन्न होता हूं। मैं खुशी से उछलता हूं, मैं आनंद से नाचता हूं। जब मैं सोचता हूं कि प्रभु फिर से आएगा और अपनी महिमा और ज्ञान से पृथ्वी को भर देगा जैसे पानी समुद्र को भर देता है, उस समय मैं नाचता और प्रसन्न रहता हूं। जबकि अति संकटमय समय सामाजिक विषयों को पूरा करते हुए मैंने बिना प्रसन्नता और आनंद के बिताया है। हबकुक अध्याय 3:19। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। कितनी महत्वपूर्ण घोषणा है, परमेश्वर मेरा बल है। उन लोगों के लिए दुखित हूं जो अपने बल पर भरोसा करते हैं, अपनी योग्यता पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तुम्हारा बल सदा सीमित है और चाहे कितना भी अपने बल को बढ़ा ले उसकी सीमा निर्धारित है। तब क्या? लेकिन जब प्रभु मेरा बल बढ़ाए उसकी सीमा निर्धारित नहीं है। कितना महान! प्रभु मेरा बल मूल है। हबकुक अध्याय 3:19 में आगे लिखा है, वो मेरे पाँव हिरनों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तब वो ये भजन लिखता है। ये भजन इब्रानी कविता के रूप में बनाया गया है। वो जोर से गाया जाता है तार वाले बाजे के साथ, लेकिन ये वास्तव में प्रभु के आने की एक महान घोषणा की गई जो हमें पुराने नियम में मिलती है। नए नियम में ये घोषणा और भी प्रकट की गई है, लेकिन पुराने नियम में एक सुंदर पद जो प्रभु के आने के बारे में है कि वो पृथ्वी पर राज्य करने सामर्थ्य से आएगा। प्रार्थना करें। पिता, हम फिर से तेरी योजना और उद्देश्य के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे विचार हमारे लिए भलाई के लिए है, बुराई के नहीं। शांति के विचार तू हमारे लिए अपने समय में लाएगा। प्रभु, जब हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी सहायता कर। जब हम प्रतीक्षा करते हैं हम संसार को देखते हैं, हम महसूस करते हैं अपवित्रीकरण, अधार्मिकता जो बढ़ते जा रहा है, और वे सब हालात जो हबकुक ने दर्शाए हैं। जैसे अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने पुकारा, प्रभु देश से धर्मी लोग खत्म हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि बुराई का ज्वार भाटा शक्तिशाली और लुभावना है जो ना रुकने वाला और जो ना धीमा पड़ने वाला है। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा राज्य आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु, तेरी धार्मिकता और महिमा का ज्ञान पृथ्वी पर भर जाए। जल्दी आ पिता, जल्दी आ प्रभु यीशु। आज यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और एक अद्भुत सप्ताह प्रदान करे। उसका हाथ आपके जीवन पर विशेष तौर पर रहे। आपका विश्वास परमेश्वर पर बढ़े। प्रभु आपकी सहायता करे जैसे उसने उन विश्वासियों के साथ किया कि वे सब देख सके जो दूसरे नहीं देख सकते, अर्थात परमेश्वर की अनंत योजना और उद्देश्य। जब आप परमेश्वर की अनुरूपता में चलते हैं तो परमेश्वर अपने उद्देश्य आपके जीवन के द्वारा पूर्ण करे, यीशु के नाम से।